الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پروگرام کا نام ہے ہماری نسلیں اور جنریشن ابتدان میں چاہ رہا تھا کہ اس پروگرام کا جو نیچر ہے اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ بتاتا چلوں میرے لیے بھی یہ پروگرام ایک سمجھیں کہ کچھ آزمائشی لگتی ہے نیا پیٹرن ہے نیا انداز ہے نئی باتیں ہیں میرے لیے بعض باتیں نہیں ہر بات نہیں نہیں ہوگی اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ بیان ہو جائے کچھ پرپس مقصد بیان ہو جائے تو پھر انشاءاللہ آگے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا میرا بیان کرنا بھی کسی حد تک آسان ہو جائے گا پھر اس پروگرام کا نام ہماری نسلیں جو ہم نے رکھا اس کے بھی مقصد بیان ہونا چاہیے کہ ہماری نسلیں سے کیا مراد ہے اور وہ جنریشن ظاہر ہے کہ ہمارا سارا نظام ہماری آنے والی نسلوں کے تحت ایک چلتا رہتا ہے پہلے ہمارے دادا پر دادا پھر ہم آئے والد آئے ہم آئے اب ہمارے پاس ہماری اولادوں نے آنا ہے کائنات کا ایک نظام ہے جو انسانوں کے تعلق سے اگر میں کہوں کہ وہ ایک پیدائش کا سلسلہ رہتا ہے اور یہ سارا چلتا رہتا ہے لیکن اس وقت اگر ہم غور کرتے ہیں تو جو ویلیوز اور عادات اور اتوار ہمارے ماضی میں ہمارے لوگوں میں پائی جاتی تھی وہ آج ہماری اس وقت کرنٹ جنریشن میں اس طرح کی عادتیں زیادہ تر پائی نہیں جاتی بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں کئی چیزوں میں کمزوریاں ہیں آج ہم کوشش کریں گے اپنے ان پروگرام میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں ان کے اسباب کیا ہیں وجوہات کیا ہیں کیا بات ہے کہ ہمارے بچے آج والدین کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کل تو ماں باپ کو یہ شکایت نہیں تھی آج اگر والدین کو شکایت ہے کہ بچے یوں ہیں بچے یوں ہیں بچے آرگومنٹ بہت کرتے ہیں بچے لڑتے بہت ہیں تو بچوں میں یہ پرابلمس ہیں تو یہ جو پرابلمس ہیں وہ کیوں پرابلمس ہیں بچوں میں یہاں بچوں کا قصور کتنا ہے ہمارے جو ٹین ایجر کہلاتے ہیں نوجوان کہلاتے ہیں ان کا قصور کتنا ہے جو جوان ہے ہمارے ینگسٹر ہمارا طبقہ ہے اس کا قصور کتنا ہے والدین کا قصور کتنا ہے سوسائٹی کا اس میں کیا قصور ہے اور اس میں ہماری ریسپانسبلٹیز کیا ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جب ہم گھروں میں کہ گھروں کی جب ہمارے پاس معلومات آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ والدین اپنے بچوں سے تنگ ہیں جب تھوڑا آپ کھولتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ بچے والدین سے تنگ ہیں تو یہ ہمارا ٹوٹل سمجھے کہ پروگرام کا ایک فارمیٹ ہے ایک طریقہ کار ہے کہ آخر ہم اپنی نسلوں کو بچائیں یہی ہمارا سرمایہ ہے یہی ہمارا کیپیٹل ہے کل انہوں نے ہی آگے جا کر اپنی زندگیاں اپنی فیملی کی زندگیاں ملک و قوم کے یہ معمار ہیں یہی ہمارا یہ آگے جا کے یہی بڑے بنیں گے انہی کے ذریعے ساری سوسائٹی اب اس میں کالج ہے اسکول ہے یونیورسٹیز ہیں گھر ہیں اور دیگر اس طرح کے جو مقامات ہیں ان سب کا ایک اپنا اپنا کردار ہے لیکن ظاہر ہے کہ سب سے پہلے والدین سے ہی ڈسکس کیا جائے گا جو میں بیان کرنے جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھروں میں ایسے بچے ہوں یا بچوں اور والدین میں یہ پرابلمس ہوں مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ہم ان پرابلمز کو سمجھیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اس کے نشانی کو سمجھیں اگر اس کو کھانسی آتی ہے تو آپ کھانسی کی معلومات لیتے ہیں اس کو نزلہ آتا ہے نزلے کی معلومات لیتے ہیں اس کو چار دن سے بھوک نہیں لگ رہی آپ پریشان ہوتے ہیں لیکن اس کی بعض عادتیں ایسی ہیں جنہیں ہم نوٹس نہیں کر رہے ہوتے اور جب ہم اس چیز کو نوٹس نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی وہ چیز مزید گرو کرتی ہے بڑھتی ہے اور پریشانی کا سبب بن جاتی ہے پھر ایک ورڈ معاشرے میں بیان کیا جاتا ہے جنریشن گیپ کہ جناب والدین میں اور اپنے اولاد میں ایک گیپ آ گیا ہے فاصلہ آ گیا ہے کیوں آ گیا ہے فاصلہ آخر اولاد اپنے ماں باپ سے بات کیوں نہیں کر پا رہی ہے آخر ماں باپ اپنی اولاد سے بات کیوں نہیں کر پا رہے ہیں بیسیکلی ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ میں آپ کو امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی جو ایک بنیادی ڈسکشن تھی اس کو میں پہلے بیان کرتا ہوں, اور یوں سمجھے کہ میری ابتدائی گفتگو میرے آگے کے آنے والے پروگرام کا ایک مقدمہ, ایک تمہید ہے, ایک وضاحت ہے, آپ کے مائنڈ کو کلیئر کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو ڈسکشنز ہوں گی, ہماری جو بات چیت ہوگی, اب جیسے پچھلا بھی آپ کو تجربہ ہے کہ میں زیادہ تر فیملیز کو ایڈریس کرتا ہوں اور اس وقت فیملی ٹائم ہی ہے, لیکن میرا موضوع اس وقت میاں بیوی نہیں, اگر ہوں گے تو بہت سلائٹلی ہوں گے. اس وقت میرا موضوع ساس اور بہو نہیں ہے, اگر وہ ساس اور بہو کی کوئی ڈسکشنز آئے گی تو بہت کم آئے گی. موضوع میری نسلیں ہیں, ہماری آنے والی نسلیں ہیں, ہماری قوم ہے, ہمارے بچے ہیں جو کل یہ بڑے ہوں گے, ان کے ایشوز ہیں, ان کی عادتیں ہیں اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پیرنٹس کا کہاں کردار آئے گا, بچوں کو کہاں پر سمجھانا ہے, بچوں کو بھی انشاءاللہ ہم یہاں پر سمجھانے کی کوشش کریں گے. تو ڈسکشن فیملی سے ہی ہے, لیکن نوجوان بھی ڈسکس کیے جائیں گے, ینگسٹر بھی جو ہمارا ٹین ایجر گروپ ہے 13 to 19 کا جو ایج گروپ ہوتا ہے وہ بھی ڈسکس کیا جائے گا, اور ہمارے دیگر جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کیے جائیں گے. اصل بچے جو ہے نا یہ والدین کے پاس ہے امانت. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں احیاء العلوم میں کہ بچے یہ والدین کے پاس ہے امانت, اگر اسے اچھی باتوں کی عادت ڈالی جائے اور اس کی تعلیم و تربیت کی جائے تو اس پر اس کا جو اس کی جو نشو نما ہوتی ہے اسی انداز پر ہوتی ہے. اگر اسے برائی کی عادت ڈالی جائے اور جانوروں کی طرح چھوڑ دیا جائے تو وہ بدبختی کا شکار ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, تو میں یہ بیان کر دیا کیونکہ اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری پرورش کو اور ہماری اس کو غور کرنے کو. آج جو پہلا جو میرا ٹاپک ہے وہ بلنگ نیچر ہے. آپ کے میں سے کئیوں کے لیے شاید یہ لفظ نیا ہوگا کہ اس کا مطلب ہے جارحانہ رویہ. بلنگ از اے کنٹینیوس اگریسو بیہیویئر. یہ ایک بچے کا ایک نیچر ہوتا ہے, جو تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے نا اس میں بھی یہ نیچر پایا جاتا ہے. یعنی یہ بالکل چھوٹے بچے ہوں یہ ضروری نہیں ہوتا, 10, 12, 13, 14, 15 تک بھی آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ نیچر ہو. اس وقت تک اس وقت جب میں نے گفتگو کی تو امیڈیٹلی آپ کے سامنے آپ کے کچھ شکلیں سامنے آ گئی ہوں کہ یار یہ تو اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور آپ اس کو ڈکلیئر نہ کریں. اچھا ہو سکتا ہے کہ میں جو بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ خود جس کے اندر یہ عادت ہے وہ خود غور کر رہا ہو کہ یار یہ تو میرے بارے میں بولا جا رہا ہے, ریئلی یار میرے اندر یہ چیز ہے. تو آپ کے اندر اگر یہ چیز ہے تو آپ بھی اس کو نوٹس لیں. میں انشاءاللہ تعالی اس کی کچھ آپ کو وضاحت کروں گا. اب یہ جو بلنگ نیچر جو ہے, جارحانہ انداز جو ہے, یہ ہوتا کیا ہے, اس کی کچھ سائنس ہیں, کچھ علامات ہیں. سب سے پہلے یہ بچے منہ پھٹ ہوتے ہیں, جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں, یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں اس کا پلس کیا ہے اس کا مائنس کیا ہے, یہ بول دیتے ہیں. یہ اس کی پہلی ایک نشانی ہے. پھر ان میں ایک علامت ایسی ہوتی ہے کہ یہ مارتے رہتے ہیں, مارتے رہتے ہیں, کسی کو مارنا, دھکا دینا, اچھا دھمکانا, ڈرانا, اس طرح کی چیزیں بھی ان میں پائی جاتی ہیں. یہ آپ کو میں انگلش کے یہ سلائڈ سے ہی ہم نے بنائی ہیں تاکہ جو ہمارے انگلش ویورس ہیں وہ بھی سمجھے کہ دیٹ ٹائپ آف نیچر یہ مطلب یہ ان میں ان بچوں میں بھی پایا جاتا ہے. اسی طرح ان میں ایک زبانی جارحانہ پن ہوتا ہے. یہ تو جسمانی جارحانہ پن ہو گیا, پھر ایک زبانی جارحانہ پن ہوتا ہے, یعنی اپنی زبان کو بھی یہ بڑے مطلب کہ وہ روڈ انداز میں اور بڑی غلط انداز میں استعمال کرتے ہیں اور بڑے عجیب غریب ناموں سے یہ پکاریں گے, طنزیہ رویہ ہوگا, لوگوں پر جملے یہ کستے پھریں گے. یہ اس طرح کا نیچر آپ کو ان بچوں میں, اور یہ بچے بھی ہیں یہ تھوڑے بڑے بھی ہیں, آپ کو یہ چیزیں بھی ان میں عموماً نظر آئیں گی. تو ایک ان کا جسمانی جارحانہ انداز, اس کو تھوڑا سا نوٹس میں لیں. ایک زبانی جارحانہ انداز ہے, और एग्रेसिव अंदाज है, मारदार बहुत करेंगे, बहुत ज्यादा मतलब ये आप तंग आ जाते हैं यार, ये इसको समझाओ ये क्या कर रहा है ये। मगर हम चीखने चिल्लाने में कुछ भी नहीं होगा, अभी आप सिर्फ नोटिस करेगा हाँ ऐसा है। अच्छा फिर इसमें जो रिलेशंस टाइप की जो चीजें होती हैं, ताल्लुकात होते हैं, इस ताल्लुकात में भी इनके इस तरह की चीजें सामने आ जाती हैं कि लोगों से ये बात नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि ये बात करते हुए कतराएंगे और लोगों की बातों का जवाब नहीं देंगे। अच्छा अलग थलग रहेंगे कि ये अलग थलग रहते हैं। तो इसी तरह बदकिस्मती के साथ लोगों पर गलत बातें ये मंसूब भी कर देते हैं, तो ये इनके ताल्लुकात की चीजें आ जाती हैं। मजीद जो मैं आपको इनकी अलामतें बयान करूंगा, उन अलामतों में फी जमाना एक टेक्नोलॉजी के तौर पर भी इनमें बुलिंग, इसको कहते हैं साइबर बुलिंग, ये टेक्नोलॉजी के अंदर भी बड़े मतलब के इनका जारियाना अंदाज हुआ करता है। मोबाइल फोन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उल्टे सीधे मैसेज करके, लोगों को ईमेल्स वगैरह के जरिए ये मतलब कि अपना जारियाना अंदाज दिखाते रहते हैं। गालम गलोच करेंगे, बेइज्जती करेंगे, लोगों की इज्जतों को उछालेंगे, इनका मजाक उड़ाएंगे। अच्छा मजीद ये कि ये चूंकि ये समझते हैं कि हम इस तरह मतलब महफूज भी रहेंगे, हमारा नाम भी डिक्लेयर नहीं होगा, तो ये एक नेचर है। ये जो कुछ मैं बयान कर रहा हूं ना, इसे मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पर देखा जाए तो ये एक बाकायदा इस पर स्टडी हुई है कि ये साइबर टेक्नोलॉजी का भी गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोबाइल फोन, आपके दीगर जो इक्विपमेंट होते हैं ये हो जाते हैं, आपके बच्चे गलत अकेले कमरे में बैठे हुए हैं, अगर इनका ये नेचर है तो ये मोबाइल फोन के जरिए इसी तरह गलत अकाउंट बना लेंगे, गलत अकाउंट बनाकर किसी और को तंग करते रहेंगे, किसी और को ये उल्टा सीधा बोलेंगे, इनके ऊपर उल्टी सीधी बातें कर देंगे। ये सब एक नेचर के तौर पर लिया जाता है जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया। अच्छा अब ये ऐसा क्यों करते हैं, बोलो यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम क्या है। अच्छा हम यही करेंगे, हम जो पेरेंट्स होते हैं हम यही करते हैं कि हम स्टडी नहीं करते। वालिदैन का काम है स्टडी करना, आपकी ये औलाद है, अब यार ये सही है, ये मस्ती करता है, बाज़ ये शैतानी करता है, इसके अंदर ये हरकत है। अच्छा हम जिस तरह उसको इग्नोर कर रहे हैं ना, इसकी इस नेचर के वजह से बच्चे ज्यादा इग्नोर किए जाते हैं। आप इनको दावतों में नहीं ले जाएंगे, आप इनको प्यार नहीं करेंगे, आप उसे झाड़ेंगे, उसके सामने आप उसके भाई की या उसके दीगर जो उसके जो करीब के जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं आप उसकी तारीफें करेंगे। ये जब सारी चीजें आप करेंगे तो इससे उसको उसकी चीज को फर्क नहीं पड़ा। यूं समझिए कि ये एक डिजीज है, ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का ये बच्चा इलाज मांग रहा है, ट्रीटमेंट मांग रहा है। अच्छा इसमें मैं अगर गलती नहीं कर रहा तो, क्योंकि जाहिर कई चीजें तजर्बे की बुनियाद पर भी मैं अर्ज करूंगा, फिर डॉक्टर जीरक से भी मैं इंशाल्लाह राय लूंगा कि कहीं मैं भूल तो नहीं कर रहा। आप गौर करें, ये जिनके बच्चे ब्लाइंड होते हैं ना, डेफ एंड डम, ना बेचारे बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, आपने देखा होगा ये बड़ा तोड़फोड़ कर रहे होते हैं, ये लड़ रहे होते हैं, ये मार रहे होते हैं, ये चीख रहे होते हैं, और आपको मतलब आपको गुस्सा आ रहा होता है कि समझता नहीं है ये, अब भाई नहीं समझता क्योंकि इसको बोली नहीं आती आपकी, क्योंकि ये जब से पैदा हुआ ये सुन नहीं रहा, ये समझ नहीं रहा, ये देख ये मतलब इसके अंदर ये चीजें कमी है, तो आपकी अटेंशन उसके ऊपर कम रही है। उसको खाना खाना होता था तो वो किसको के खाना खाना है, आप उसको छोड़कर उसके दीगर भाई बहनों को लेकर जाते थे, इसके अंदर एक एग्रेसिव इसके अंदर जो एक नेचर एस्टेब्लिश हुआ। हु इज द रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है उसका, यानी मेरी इस पूरी डिस्कशंस को आप समझने की कोशिश करें। और पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन जो हैं, वो प्लीज हमारे इस प्रोग्राम को प्रॉपरली फोकस करें। आपको लगता है यार अभी बच्चे नहीं है, आज तो कल बच्चे हो जाते हैं, जो बच्चे हैं उनके लिए भी है कि उनको ये चीजों से उनको क्या क्या नुकसान पहुंचता है, इंशाल्लाह मैं वो भी बयान करूंगा। तो आप देखिए कि चूंकि ये गूंगे बेरे और इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनके अंदर ये चीजें ज्यादा होती हैं क्योंकि वो इग्नोर किए जाते हैं। अच्छा अब ये बच्चा करता क्यों है, ये करता इसलिए कि उसको दूसरे बच्चों की तरह इसको भी अच्छा लगने का शौक होता है, तो वो आपकी अटेंशन लेना चाहता है, वो शोहरत चाहता है, वो अपने आप को नुमाया करना चाहता है, और मतलब कि वो मौजूदा जो इसके साथ कैफियत होती है उसे तंग आया हुआ होता है, उस तंग आ जाने की वजह से वो ऐसी चीजें कर रहा होता है, यानी अपनी अहमियत दिखाना चाहते हैं, अपने आप को ताकतवर दिखाना चाहते हैं ये। इसी तरह वो चाहते हैं कि मतलब कि सबकी पसंद को अहमियत दी जाती है, मेरी पसंद को भी अहमियत मिलनी चाहिए, मेरी पसंद को भी तरजीह देनी चाहिए। तो ये चंद चीजें इनके इस रवैयों का सबब बनती है, इनके इस एटीट्यूड का सबब बनती हैं, और हमें चाहिए कि हम इनका इलाज की तरफ जाएं। अब ऐसे बच्चों को अगर इस रवैये के साथ छोड़ दिया जाए तो अब इसके इम्कानात क्या क्या हैं? अगर इसको आप इलाज नहीं करते, आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करते और इन्हें इनके हाल पर छोड़ देते हैं, तो फिर ऐसे बच्चे क्या करते हैं, बुरी लत में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको वो मिल नहीं रहा होता, उनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होता, उनको इलाज नहीं मिल रहा होता। ये बताता चलूं कि इसका इलाज मेडिसिन नहीं है, नहीं, इसका इलाज मेडिसिन नहीं है, इसका इलाज इसके वालिदैन के हाथों में कि इसका इलाज उसके माँ बाप करेंगे। बाद औकात क्या होता है, मैंने डॉक्टर से जब मैंने इस केस पर डिस्कस की तो उसने कहा कि ज्यादातर क्या होता है कि जब क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, मदरसे के अंदर, किसी भी इदारे में जब कारी साहब या टीचर या जो भी टीचर, मेल फीमेल जो भी हो, ये पेरेंट्स को बुलाकर कंप्लेन करते हैं, प्लीज थोड़ा समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपकी कॉल्स भी लूंगा। ये पेरेंट्स को बुलाकर कंप्लेन करते हैं कि आपका बच्चा यूं यूं करता, आपका बच्चा यूं यूं करता। अच्छा, वहीं बैठे बैठे ये टीचर जो है ना, वो अपनी पूरी वो उसकी साइकोलॉजिकली इफेक्ट क्या है, इसके सोच क्या है, इसकी नफसियत का बयान कर देते हैं। अरे भाई, वो डॉक्टर थोड़ी है, वो टीचर है, वो बेचारा अपने पढ़ाई को पूरा कर दे तो उसकी मेहरबानी है, उसने बच्चे पर क्या स्टडी किया। अगर वेरी वेरी सॉरी टू से, जो टीचर्स हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आपने क्या बच्चों पर कोई स्टडी की है, बच्चों पर को आपने पीएचडी की है, इनकी सोच पर, इनकी समझ पर, इनके नेचर पर आपने स्टडी की है? बल्कि कई फीमेल टीचर्स तो ऐसी होती है कि जिनके बच्चे ही नहीं होते, वो मैरिड ही नहीं होती, उनकी शादी नहीं हुई भी होती, उनको क्या पता कि बच्चों का नेचर क्या होता है। और अगर बच्चों का नेचर उनको पता है तो जिनके छह छह बच्चे, माँ को आज तक नहीं पता चला, टीचर को पता चल गया। अच्छा, हम क्या करते हैं एज अ पेरेंट्स, जब टीचर हमें ये कंप्लेन करते हैं कि आपका बच्चा यू, तो हमने फौरन बच्चा उठाया, इसको थोड़े दो चार थप्पड़े मारी, इसको थोड़े वो धक्के वक्के दिए, इसको थोड़ा झारा डांटा, और ये सब कर कराने के बाद फिर किसी ने कहा कि यार इसको नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाओ। अब नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले गए, अब नफ्सियाती डॉक्टर ने उसको क्या करना है, उसको एक दो गोलियां देनी है, जो एक इनकी एक कॉमन गोलियां होती है वो देनी है, और वो डॉक्टर, अब आप बताइए कि मतलब कोरोना जैसे, अभी कोरोना है ना, कोरोना एक बीमारी जरूर है, लेकिन इस बीमारी का जो इस वक्त ट्रीटमेंट और एक स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट है और एक नेचर ऑफ ट्रीटमेंट बनाया गया है, ये खुद ही इतना इस वक्त खतरनाक किस्म का बनाया गया है कि सेल्फ आइसोलेशन, तो ये तो वो, करीब ना जाए तो डॉक्टर भी उसके पास आता तो डॉक्टर की शक्ल देखने को तरस गए। हालांकि सारी एहतियातें हैं, मगर इन एहतियातों से उस मरीज के ऊपर जो होता है, कभी तनाव हो जाएगा, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन, कोई भी करीब नहीं आएगा, वो बिल्कुल वो पेशेंट अलग हो जाएगा। तो कोरोना तो आया, उसके साथ जो कोरोना की दहशत है वो दहशत ज्यादा उसको खराब कर देती है, फिर डॉक्टरों के चारों तरफ से इसको शक्ल सूरत नजर आती है। तो फिर जब ऐसे बच्चे को हम नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो वो डॉक्टर फिर जब इसका ट्रीटमेंट करता है, और फिर हम समझते कि हमारा बच्चा बीमार हो गया है। मुझे एक डॉक्टर ने बात बताई, इस तरह के एक इदारे में कि जहां बहुत सारे इस तरह के बच्चे डाले जाते हैं कि उनका मतलब कि वो थेरेपी होती है, इनका इलाज किया जाता है, तो ना कई बच्चे ऐसे, यानी मेजोरिटी बच्चे ऐसे जो उस इदारे के लिए नहीं है, उनका इलाज उनके घर में है। आपको मैं बताऊं कि वालिदैन अगर ऐसा बच्चा पाते हैं, अभी तो मैंने एक नेचर बयान किया ना, बुलिंग नेचर, साइबर बुलिंग हो जाती है, बुलिंग जारियाना अंदाज होता है, सिर्फ इसके बारे में मैं कह रहा हूं कि बच्चे की जिंदगी और मामलात पर गौर करें, क्या ये ऐसा क्यों है। यानी मैं आपको बता रहा हूं, मेरे बच्चों में एक बच्चा था, और उसका पेट का प्रॉब्लम था, यानी वो उसको एक प्रॉब्लम आ गया था। अच्छा, मैंने खुद डॉक्टरों को दिखाया, कुछ समझ नहीं पड़ रही थी मैं करूं तो क्या करूं, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये डॉक्टर वो डॉक्टर। तो हुआ ये कि एक डॉक्टर ने डायग्नोस कर लिया और मुझे एक मशवरा दिया कि इससे डेयरी प्रोडक्ट से बचाएं, छोटी उम्र के वो मेरा बच्चा था, इसको इसको डेयरी प्रोडक्ट से बचाएं, यानी कि वो चीजें जो दूध से बनती है वो बचाएं। तो मैंने दूध, अब बिस्किट भी दूध से बनता है, बिस्किट में भी दूध है, बहुत सारी चीजों में दूध है, इवन के ब्रेड में भी थोड़ा बहुत मतलब इस तरह की चीजें होती हैं। तो मैंने कोशिश की कि इसका डेयरी प्रोडक्ट मैंने इसकी बंद कर दी। खुद मेरा बच्चा बहुत प्रॉब्लम में था, अल्लाह का शुक्र है अब वो डेयरी प्रोडक्ट इसको कोई प्रॉब्लम नहीं करती। एक अरसे तक उसका ये प्रॉब्लम, मैंने डेयरी प्रोडक्ट रोक ली जो दूध से चीजें बनती है, उसका प्रॉब्लम खत्म हो गया। मैंने रोकना था, मैंने उसको ध्यान देना था, आपने ध्यान देना अपने बच्चे को, उसकी प्रॉब्लम को समझे कि ये जारियाना अंदाज इसका क्यों है, वो ऐसा क्या इसके साथ मामला चल रहा होता है। तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। फिर ऐसे बच्चे को वक्त दें, इसके ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, इसको वक्त दें। अगर बच्चे वालिदैन की दूरियों में का शिकार हैं तो उसकी इस दूरी को दूर करें, क्योंकि इसके इस नेचर की वजह से हम दूर हो गए। स्पेशली यहां मां का किरदार है। मैं आपको एक बात बताऊं, डॉक्टर इकबाल का तो आपने नाम सुना होगा, बड़े शायर गुजरे हैं। इनका एक जुमला मैंने पढ़ा, लिखते हैं कि औरत अगर इल्म और अदब की कोई बड़ी खिदमत अंजाम ना दे सके तब भी सिर्फ इसकी जो ममता है ना, मां होना, ये खुद ही काबिल कदर है, जिसके तुफेल ये मतलब के बड़े बड़े लोग इसकी इस ममता और इसकी परवरिश के साए में परवान चढ़ते हैं। तो बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो वालिदैन का अपने बच्चों को टाइम देना है, दे नीड टाइम। अच्छा, हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि एक तो ये बाहर मुल्कों में तो मसाइल है ही, हमारे यहां भी है, जहां मियां बीवी दोनों कारोबार करते हैं, दोनों नौकरियां करते हैं वो, अच्छा फिर ये कि नौकरियां नहीं करते तो आजकल दोनों अपनी अपनी जगह पर बिजी रहते हैं, माँ बच्चों को वो ध्यान नहीं देती, वो तरबियत नहीं करती जो माँ को तरबियत करनी चाहिए, माँ ने वो तरबियत की चीजें ना देखी ना पढ़ी ना समझी। तो ये चीजें जो गैप जो है ना, गैप खत्म करना बहुत जरूरी है। और इंशाल्लाह फिर मैं इसकी तफसील में आऊंगा। आइए कुछ कॉल्स लेता हूँ पहले मैं।
अच्छा, मेजर मोहम्मद आबिद अतारी अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। बड़ा अच्छा टॉपिक आर जनरेशन आप लेकर आए हैं, और चारहाना रवैये के हवाले से मैं थोड़ा अर्ज करना चाह रहा था कि बच्चों का थोड़ा सा रवैया इस तरह का होता है कि बच्चे आपस में जो है वो जेलस रन हो जाता है, मतलब दूसरों को चीज मिल रही है और उसको नहीं मिल रही, तो इस वजह से उनका भी चारहाना रवैया बन जाता है। तो अगर इस हवाले से भी अगर हमें कोई मदनी फूल अता हो जाए आपकी तरफ से कि किस तरह बच्चे जो है वो अपने जारहाना रवैया को दूर रखें, और जो जेलस मन है, जो हसद हो जाता है कि उसको मिला है मुझे नहीं मिला, उस वजह से भी जो है ना वो गुस्से में आ जाते हैं, तो वो किस तरह जो है ना बच्चे इससे जो है अपने आप को बचाएं।
देखिए ये मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा आपने कॉल किया। इसका बेस्ट वे होता है अदल व मसावात, मेरे पास लिखा हुआ था। वालिदैन चूंकि अदल नहीं करते, इंसाफ नहीं करते, बराबरी नहीं करते, और एक को कम एक को ज्यादा, एक को गोद में लेंगे दूसरे को नहीं लेंगे, एक को डांटेंगे एक को झाड़ेंगे तो एक को प्यार करेंगे, तो इस तरह उसके अंदर अपने भाइयों बहनों और पड़ोसियों में, खानदान के लड़कों में भी उसके साथ ये हो जाता है। अब आपको क्या प्रॉब्लम है, आप अपने बच्चे को बार बार एक मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, देखो वो फर्स्ट ही आता है, देखो फर्स्ट ही आता है, देखो फर्स्ट ही आता है। भाई वो पढ़ाई में फर्स्ट आ रहा है, आपका बच्चा किसी और मामले में भी तो फर्स्ट आ रहा है, जरूरी है कि सारे के सारे पढ़ाई में फर्स्ट आए, जरूरी है कि सारे के सारे फला काबिलियत और सलाहित में फर्स्ट आए। अगर सारे के सारे बिजनेसमैन ही बनेंगे तो फिर मजदूर कौन बनेगा, सुपरवाइजर कौन बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बनेगा। यानी एक नेचर होता है, एक बच्चा बैठकर वो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा कर रहा है, एक बैठकर ड्रॉइंग बहुत अच्छी बना रहा है, तो जो मैथमेटिक्स की अच्छी कर रहा है तो हो सकता है ये मैथमेटिक्स वाला सीए की तरफ जाता हो सकता है ये ड्राइंग बनाने वाला आर्किटेक्ट की तरफ जाता हो। आप बोले नहीं तुम्हें हिसाब किताब सही नहीं आता, तो उसको वो आर्किटेक्ट बनने की कोशिश कर रहा होगा। ये सब एग्जांपल दे रहा हूं। तो वालिदैन का काम है कि वो गौर करें और अपने बच्चों को ये इस तरह किसी नफ्सियाती डॉक्टर के हवाले करके या अपने आप को बैकफुट पे ना ले जाए कि यार ये तो है ही ऐसा। डॉक्टर जीरक क्या कहते हैं आप, अब तक की जो सारी डिस्कशन है इसको आप कंक्लूड करेंगे?
सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको मदनी चैनल के नाजरीन को और मदनी चैनल की तमाम टीम को माह रमजान मुबारक की आमद मरहबा।
बहुत बहुत मुबारक।
अल्लाह ताला हमें इस महीने की बरकतें नसीब फरमाए।
आमीन आमीन।
माशाल्लाह आपने जो है वो बहुत सारी गुफ्तगू बुलिंग के हवाले से की, इसके काफी सारे फैक्टर्स पर गुफ्तगू की, तो मैं सोच रहा था कि कौन सा पहलू है जो जिस पर मुझे बोलना पड़ेगा। तो ये जो आपने कलाम किया इन समरी अगर मैं पेश करना चाहूँ कि हम सब की हैसियत अगर इस पर नफ्सियाती तजिया किया जाए तो हम सब की बुनियादी हाजात होती हैं जिनको इंग्लिश में नीड्स बोलते हैं। अब ये नीड्स कुछ जिस्मानी तौर पर होती है जैसे बदन को ढांपना, इसी तरह गर्मी सर्दी के हवाले से घर का होना, तो खाने का होना, नींद का, इस हवाले से ये बुनियादी फिजिकल हाजात। इसी तरह कुछ हमारी सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, बुनियादी हाजात होती हैं, जिनमें बचपन से लेकर ही आपको अपनी इज्जत नफ्स और एक वकार की जो है वो तलब होती है कि जो है वो मेरी कोई जो है वो इज्जत नफ्स मजरूह ना करे, और प्यार और मोहब्बत और सिक्योरिटी। तो ये तमाम की तमाम चीजें बच्चा सबसे पहले अपने घर के अंदर से उसको या तो मिलती है या नहीं मिलती। जब उसको मिलती है और वालिदैन की इन चीजों पर तवज्जो होती है तो वो बच्चा एक बैलेंस्ड पर्सन की तरफ परवान चढ़ता है और उसकी पर्सनैलिटी में जो है वो अदल आता है। जहां जहां ये हाजात पूरी नहीं होती, चाहे वो फिजिकल हाजात हो या हमारी मेंटल या साइकोलॉजिकल या सोशल हाजात हो, तो वहां पर वो क्या होता है कि फिर उसके अंदर उस चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, आपने सही बात की कि ये सिर्फ बच्चों से ही नहीं है, बड़ों से रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि आज हमारा फोकस बच्चों पर है तो फिर हम उन हाजात को जो है किसी ना किसी तरीके से हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये बुलिंग के हवाले से भी ऐसा ही होता है कि जितने बच्चे बुली कर रहे होते हैं, जो परपेट्रेटर होते हैं बुलिंग के, इनके साथ प्रॉब्लम होती है। और इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इनकी ये जो हाजत है ना कि मेरी इज्जत हो, मेरी शोहरत हो, मेरी रेस्पेक्ट हो, मैं घर और फैमिली को इसका फोकस पॉइंट तसव्वुर करूंगा।
Right.
तो यहाँ से ही जब तरबियत नहीं होती वहां आगे बाद में उसका इफेक्ट नजर आता है दूसरी जगहों पर, तो वो फिर स्कूल के अंदर बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों को बुली करेगा। और स्कूल के अंदर या मदरसे के अंदर जो बुलिंग होती है इसमें तीन फैक्टर जो है वो होते हैं, एक तो वो बच्चा जो विक्टिम होता है, दूसरा बच्चा जो बुली कर रहा होता है, और तीसरा जो मेन फैक्टर होता है ये जो आसपास खड़े होकर देख रहे होते हैं। इन तीनों के साथ प्रॉब्लम यानी इश्यू है। तो आज क्योंकि हम बुली के हवाले से बात कर रहे हैं तो घर में जब इनकी बुनियादी जरूरियात जब पूरी नहीं होती, और ये बुनियादी जरूरियात पूरी करना सबसे पहले वालिदैन और फैमिली मेंबर्स का जो है वो इसमें रोल आता है, तो ये मैं जो है ऐड करना चाहता था।
और आपने जैसे भी डॉक्टर जीरा कहा ना कि अभी ये बच्चा है, असल मसला ये है कि बच्चा है तो इसकी आदत उसी की उम्र के हिसाब से है, लेकिन अगर इस नेचर को कंट्रोल ना किया गया और इसका इलाज ना किया गया, ट्रीटमेंट ना किया गया, तो इसकी एज के साथ साथ, इसकी अक्ल के साथ साथ इसका ये नेचर भी तो ग्रो करेगा ना, बढ़ेगा ना, और नतीजा ये निकलेगा कि पहले ये धक्का मारता था और अब फिर थप्पड़ मारेगा, फिर किसी और को मारेगा, फिर जेल के अंदर चला जाएगा। आपको ये जो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो बात समझ रहे हैं या थोड़े से समझदार बच्चे हैं जिनके अंदर आपके अंदर अगर ये चीजें हैं, तो आप याद रखिए कि अगर आपके अंदर ये रवैया रहा और ये चीजें रही ना, तो नंबर एक आपको कभी कोई अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे। आपको भी शायद ये होगा कि मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है, मेरी इज्जत नहीं है, मेरी स्कूल में इज्जत नहीं है, मेरे घर में इज्जत नहीं। तो बेटा इज्जत कहाँ से होगी? जब आप लोगों को धक्के मारोगे, आप उनसे लड़ोगे, आप उनको गालियां दोगे, आप उनको बेटा बेइज्जत कर दोगे, आप इनकी चीजें चोरी कर लोगे, आप वालिदैन को गुस्से में आकर देखोगे, तो भाई बहनों से आप लड़ोगे, तो बेटा जब इस तरह का नेचर आपका होगा तो कैसे लोग आपके करीब आएंगे, ये मुझे आप बेटा आप बता दें। तो आपको सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि फैमिली में, घर में, रिश्तेदारों में, स्कूल में, मदरसे में आपकी बेटा इज्जत हो, लोग आपसे मोहब्बत करें, तो बेटा लड़ने वालों से, झगड़ा करने वालों से, धक्का मारने वालों से, गालियां देने वालों से बेटा कोई मोहब्बत नहीं करता। आप किसी को उल्टे सीधे SMS करके डराते रहे, किसी को आप बेइज्जत करते रहे, किसी को आप झाड़ते रहे, को बैठे बैठे मतलब आपने किसी को बैठे बैठे झाड़ दिया, उसको आपने बिल्कुल दो टके का कर दिया, तो बेटा आपसे कौन मोहब्बत करेगा? आप मतलब माशाल्लाह उल्टी सीधी गालियां दें और आप मतलब के उसको मजीद नुकसान पहुंचाएं, उसकी बेइज्जती करें और आपको लगे कि अगर इसकी बुराई मेरे हाथ में आई और मैं इसकी बुराई को आम कर दूं। मुझे बताइए कि जिसको पता हो कि यार ये जो मेरे साथ मेरा दोस्त है ना, इसे मेरी बुराई पता चलेगी तो ये मुझे रुस्वा कर देगा, तो बेटा कौन आपसे दोस्ती करेगा ये बताइए। तो अब हर कोई तो बेटा वालिदैन नहीं ना होते जो आपके इस नेचर को निभा लेंगे। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे नौजवान हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके कोई दोस्त नहीं होते और वो मतलब स्कूल में भी लड़ते रहते हैं, मदरसे में लड़ते रहते हैं, अच्छा फिर वो टीचर की मार भी खाते हैं बदकिस्मती के साथ। अब टीचर वालिदैन नहीं है, सबसे बेस्ट यहाँ जो आपके लिए जो सूटेबल पर्सन है, जो आपके लिए कुछ कर सकती है, जो दो शख्सियत है वो बेटा एक माँ है और एक वालिद है। सबसे ज्यादा ये दोनों हैं जो इस वक्त आपको आपकी इस आदत से निकाल सकते हैं। तो और वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के नेचर का इलाज निकालें, डॉक्टर के पास ना लेके जाएं, आप सेल्फ डॉक्टर हैं अपने बच्चों के, आपसे बेहतर कोई इलाज आपके बच्चों का नहीं कर सकता, ये याद रखिए। इस वक्त आपके बच्चे को मेडिसिन की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ बताता हूं कि आपको क्या करना है इसमें। बाद औकात बच्चे में ये नेचर पैदा होता है जब माँ बाप को लड़ता देखता है तो वो कर तो कुछ नहीं सकता। अब जब माँ बाप लड़ रहे हैं तो बच्चे के अंदर ये जारियानापन पैदा हो जाता है, क्या यार ये दोनों इसी तरह लड़ रहे हैं तो मेरे को भी लड़ना चाहिए। तो भाई पहले आप तो लड़ना बंद करें। माँ बाप की जो लड़ाई है ना, ये बच्चे के अंदर बुलिंग नेचर पैदा कर देती है और वो देख रहा होता है कि भैया ये हो रहा है। तो आप सबसे पहले आप ये भी अपना रवैया बदलें कि आपने लड़ना नहीं है। फिर अपने बच्चे की गैदरिंग का जायजा लें कि आपके बच्चे की गैदरिंग क्या है, उठता बैठता किसके साथ है, क्योंकि जब इसका नेचर ऐसा हुआ तो इसके दोस्त भी फिर इसको कोई सुलझा हुआ दोस्त बहुत मुश्किल से मिलेगा, उलझे हुए लोग मिलेंगे। जब उलझे हुए लोग मिलेंगे तो आपके बच्चे की तबीयत दुरुस्त नहीं होगी। तो वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चे की सोहबत का, उसकी गैदरिंग का जायजा लें। बहुत इंपॉर्टेंट बात बयान करने जा रहा हूं। अच्छा ये जो मैं बयान कर रहा हूँ बाकायदा ये रिसर्च जो मैं आपको जो बोल रहा हूँ ये रिसर्च है सारी, और इस टॉपिक पर लिखी गई समझें कि बेशुमार किताबों को मैं आपके सामने एक घंटे के अंदर कंक्लूड करके बयान कर रहा हूँ। अगर आप इसका अगर स्टडी करने बैठेंगे तो आपके पास किताबों का तंबार लग जाएगा। हर एक ने अपने अपने तजर्बे और उसके हिसाब से इल्म के हिसाब से किताबों में अपनी अपनी वो चीजें लिखी हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह की रहमत से, डॉक्टरों से वगैरह से मशवरा कर कि मैं आपके सामने कंक्लूड लेकर आऊं। मकसद यही है कि हमारे बच्चे इस नेचर से बाहर आ जाएं। अगर बच्चा आपका इस तरह के वीडियो गेम्स खेल रहा है, इस तरह की पिक्चर्स देख रहा है, इस तरह के टीवी प्रोग्राम देख रहा है जिसमें इस तरह की चीजें होंगी, तो ऑलरेडी उसके अंदर ये चीज है। यानी यूं समझेगा अगर मिट्टी के तेल को चिंगारी दिखा दो तो वो आग लगने में कितनी देर लगेगी भाई। तो आप देखिएगा आपका बच्चा ये इंटरनेट पर कर क्या रहा है, क्योंकि ये उसके रवैये को डबल करेगा, ये उसके जारियानापन को डबल करेगा। लिहाजा अपने बच्चों को फिल्में, टीवी, इंटरनेट ये जो जो देखता है इससे इसको रोकिए, मना कीजिए कि ये इसके अंदर, क्योंकि गुनाह, अल्लाह की नाफरमानी और दिमाग की दीगर खराबियों के साथ साथ इसके अंदर ये जारियानापन में इजाफा होगा और वो मारेगा, पत्थर भी खींच के मार देगा। आप देखा बच्चा पत्थर खींच के मार देता है। तो बच्चे को लेकर बैठे, अब वालिदैन क्या करते हैं, बच्चा जैसे बदतमीजी करता है ले थप्पड़। अब बच्चा वैसे ही जारियाना है, उसके अंदर वैसे ही वो एग्रेसिव है और आप थप्पड़ मारकर आप क्या समझते कि उसका वो नेचर कम कर देगी? नहीं, आपने उसके नेचर को एक दो पाव बढ़ा ही दिया, एक दो चार छटंग बढ़ी गया होगा। अब उसके अंदर ये चीज बढ़ेगी, कम नहीं होगी। मां लात मार दिखा घर से बाहर, उबर घर से बाहर निकाल दिया। मतलब बाद वक्त बदकिस्मती के साथ, वेरी सॉरी टू से, माफी, माँ बाप गालियां देते हैं यार, बुरा भला कहते हैं। अच्छा ऐसे बच्चों को टीचर भी प्रॉपर ट्रीट नहीं करते। यू आर टीचर, आप टीचर हैं, आप उस्ताद हैं, आप देखते हैं कि अगर बच्चे के अंदर ये नेचर है तो आप उसका उसको हल दें, उसको आप ये मतलब मेरा मुस्तकबिल है ये बच्चा, ये हमारी आने वाली नस्लें हैं, अगर इसके अंदर ये नेचर है, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो कल माजल्ला कत्ल करेगा। मेजोरिटी जेलों के अंदर जो लोग बंद है ना, जेलों के अंदर जो लोग बंद है मेजोरिटी ये बुलिंग नेचर के लोग होते हैं। ये स्टडी है, मैं आपको स्टडी बता रहा हूँ, ये बुलिंग नेचर के लोग होते हैं क्योंकि वो तबियत इनके, वो मारते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, स्ट्रीट फाइटर बन जाते हैं, फिर तरह तरह की वो फिर हरकतें करते हैं और फिर इनको पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो वालिदैन और चाहे टीचर, अच्छा पड़ोसी, पड़ोसियों का भी इसमें काम है। पड़ोसी देखते हैं अगर ऐसा बच्चा है तो आपका नहीं, से पड़ोसी का तो बच्चा है, अगर उसका नेचर है इसको दूर हटाओ, इसको दूर हटाओ, देखो बाजी आप आना लेकिन इसको लेकर मत आना। अरे भाई क्यों लेकर नहीं आए, नहीं ये यूं यूं करता है, तो आप शफकत दो ना, मोहब्बत दो। अल्लाह के वाले, महल्ले वाले, उस्ताद, टीचर, माँ बाप, भाई बहन सब मिलकर इस बच्चे के इस नेचर का इलाज निकालें, इसको छोड़ ना दें, तो ये आपके लिए और हम सबके लिए बेहतर है। तो इसको इन तमाम हरकतों से बचाएं और इसके अखलाक दुरुस्त करने पर कोशिश करें कि इसके अखलाक दुरुस्त हो, उसके सामने नरमी वाला अंदाज लें, उसको कोई मॉडल के तौर पर दिखाएं, उसका मुकाबला ना कराएं, उसका मुकाबला ना कराएं। फिर उस ऐसा बच्चा कभी कभी अच्छे काम करता है, आपका काम करके दे देगा, इसको इनाम दे, इसको शाबाशी दे, इसकी हौसला अफजाई करें, इंशाल्लाह इससे उसके नेचर में कमी आएगी। और जैसे आप देखें इसका नेचर थोड़ा कम हुआ, इसने बड़ा मतलब कि आपके साथ एक अच्छा रवैया अख्तियार किया, शाबाश बेटा, सीने से लगा ले उसका यार, शाबाश बेटा, शाबाश। यानी आप मेरी इस प्रोग्राम को समझिए कि हम इस माह रमजान में हमारी नस्लें के नाम पर हम एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे आपके साथ। हम आज तक ये देखते रहे कि हमारे बच्चे में ये है, मगर हमने बच्चे का इलाज खुद नहीं किया। और मेरी जितने टॉपिक्स अगर मैं आपके साथ इस नेचर पर या इस उन्वान पर जो मैं आपसे बात करूंगा, इसका जो बेस्ट, इसके जो डॉक्टर हैं और जो जिसके हाथ में ट्रीटमेंट है वो वालिदैन है। याद रखिएगा कि मेरे इस प्रोग्राम का जो ताल्लुक है वो किसी डॉक्टर से कम, किसी मेडिसिन से कम है। सबसे ज्यादा मेरा ये प्रोग्राम का ताल्लुक उस बच्चे से है, उस नौजवान से है, उन जवानों से है कि जो खुदा ना खास्ता इस आदतों का शिकार हैं। तो उनको ये पहले देखना है कि हमारी आदतों से उनको दुनिया में कभी को फायदा हुआ है, मुश्किल है, कभी नहीं, मुश्किल हो जाएगा। आप कब तक औरों को इल्जाम लगा लगा कर खुद को फारिग करेंगे, नहीं, अपनी चीजों को दुरुस्त करेंगे तो होगा। जूते में अगर कील होना तो बेटा कील निकाली जाती है तभी जूता पहनने के काबिल होता है। अगर सर की टोपी के अंदर कोई चीज फंसी हुई है और टोपी पहनोगे ना तो चीज चुभती है, तो टोपी उतार कर तो लोग रख देंगे ना, चुभती चीज बेटा कैसे लोग सर पर रखेंगे, चुभता जूता बेटा कैसे लोग पांव में रखेंगे, तंग लिबास बेटा लोग कैसे पहनेंगे। आप अपने नेचर में तंगी खत्म करें, आप अपने अपने नेचर के जूते से कील निकाले बेटा, लोग नहीं कर सकेंगे, लोग आपको सर पर नहीं रखेंगे क्योंकि आपको सर पर रखते हैं तो चुभती है बात, आप उनको तकलीफ दे रहे हो, तो बेटा आप उनको धक्के मार रहे हो, आपको पता ही नहीं होता कि बेटा आप क्या कर रहे हैं। तो अच्छा ये मैं उनसे बात कर रहा हूं जो मेरी बात समझ रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जो अभी मेरी बात समझने की पोजीशन में नहीं है तो उनके वालिदैन तो मेरी बात समझ रहे हैं ना। आप देखिए इसी तरह जो ये बच्चे बड़े हैं, बड़े बच्चियां हैं इस नेचर की जिनके अंदर इस तरह के एटीट्यूड आए हुए हैं और शादी की उम्र है उनकी, तो कल यही नेचर लेके जब उनकी शादी होगी तो कल ये वो लड़की है तो लड़के का जीना मुश्किल कर देगी, लड़का है तो लड़की का जीना मुश्किल कर देगा। तो ये अभी से बुलिंग नेचर को कंट्रोल करें, शफकत दें, मोहब्बत दें, प्यार दें और मेरे इस्लाम में मुझे कॉल्स दें।
आई एम स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस एंड हमें ये सब्जेक्ट जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, तो उसमें जो आज का टॉपिक है बुलिंग वो भी हमने पढ़ा है। तो मैं ये आज का प्रोग्राम हाजी इमरान अतारी का बहुत दिलचस्पी से देख रहा था, तो मेरा हाजी इमरान अतारी से ये सवाल है कि व्हाट इज विक्टिमाइजेशन एंड हाउ वी रिड्यूस दी बुलिंग एट वर्क प्लेस, हम बुलिंग को कैसे जो है वो खत्म करें, कैसे कम करें हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और एम्प्लॉय रिलेशन को कैसे स्ट्रांग करें।
नरमी को पढ़ें, पोलाइटनेस को पढ़ें, कि नरमी क्या है, पोलाइटनेस क्या है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आपके साथ तमाम तर वही भी है वो जो आप पसंद करते हैं, ऐसा नहीं होता। हर वक्त पसंद का खाना नहीं मिलता, हर वक्त पसंद का कन्वेंस नहीं मिलता। कभी आप बस में चढ़ेंगे तो कभी सीट मिलेगी, कभी सीट नहीं मिलेगी, अब सीट नहीं मिलेगी तो क्या लड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा आप खुश खुश ऑफिस पर गए हो, लेकिन हर आदमी खुश खुश ऑफिस पर आए जरूरी तो नहीं होता, उतने प्रॉब्लम्स होते हैं, बीमार होता है, सर में दर्द होता है। तो गलत रवैये को बर्दाश्त करने की आदत पैदा करे, उसके लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का मुताला करें और गौर करें। उस बात उसमें आपके कॉल पर मैं आपको एक बात बताऊंगा, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक को किसी ने खींचा, यानी किसी ने पीछे से खींचा तो वो चादर मुबारक गले में थी, तो वो गले के से मतलब लगी तो आपके गले में गर्दन में कहीं खराश मतलब तकलीफ हुई आपको। जब तकलीफ हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला वसल्लम जब उसकी तरफ आपने देखा तो आप देखकर मुस्कुरा दिए। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको कहा, मुस्कुरा दिए। तो सोचिए तो सही, हमें को धक्का मारे या हमारे साथ कैसा करे, अगर हम उसको मिसा के तौर पर धक्का नहीं देंगे, उसको मारेंगे मारेंगे तो मुस्कुराएंगे तो नहीं, हमारा नेचर ऐसा है। मगर हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने उसको देखकर मुस्कुरा दिए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन किरदार है। नबी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, किसी को ठोकर लगी, किसी को लगा पाओ, तो उसने कहा भाई अंधे हो, तो आपने इरशाद फरमाया अंधा तो नहीं हो, गलती हो गई। यानी कि आप बड़ा दरगुजर कर नरमी करके गुजर गए। तो याद रखिए बुलिंग नेचर जो है वो एक जारियाना अंदाज है, एग्रेसिव नेचर है, इसकी अपोजिट की तरफ जाए, नरमी और अपने अंदर वो बर्दाश्त पैदा करें। जी
शाहिद अवान रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ, माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं पूछना ये चाह रहा था कि जो बुलिंग है अक्सर ये सिखाई भी जाती है बच्चों को कि अगर ये बुलिंग नहीं करेंगे तो दुनिया बहुत तेज है, धोखेबाज दुनिया है, तो वो धोखा ना दे दे बच्चों को, तो इस बारे में भी रहनुमाई फरमा दें।
नहीं, समझदारी सिखाना, अच्छे बुरे की तमीज सिखाना और है, लेकिन बुलिंग नेचर ये माँ बाप सिखाए तो माँ बाप कोया के दोनों हाथों से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने बच्चों को नरमी सिखाएं, अगर बच्चों के अंदर आप एग्रेसिवनेस ले आएंगे, इनके अंदर ये जारियाना अंदाज लेकर आएंगे तो कल वो आपके साथ भी जारियाना अंदाज इख्तियार करेंगे, आपकी छोटी छोटी बातें बच्चे को बुरी लग जाएंगी। बच्चों को नरमी सिखाएं, बच्चा शुरू से अगर आपके साथ थोड़ा सा एग्रेसिव है तो आप एग्रेसिव ना हो जाए, उसको बैठकर तमीज सिखाएं। अच्छा ये बच्चे का एक नेचर है, बच्चा सुनकर कम देखकर ज्यादा समझता है। मैं भी पिछले दिनों मेरे सुनर के पास गया, सुबह के वक्त फजर की नमाज के बाद मेरी हाजिरी थी, तो हसन रजा को आपने देखा होगा, तो मेरे सुनत वो फजर के बाद थोड़ी देर के बाद आप कुरान खोलकर बैठे थे। अच्छा आप कुरान खोलकर बैठे थे और कुरान की तिलावत कर रहे थे, तो हसन रजा ने भी कुरान करीम लिया और उसी तरह तकिया लेकर कुर्सी पर बैठ कर उसे कुरान लिया और उसने वो अपने अंदाज से कुरान की तिलावत करा, देखकर। अगर घर के बड़े बुलिंग पर्सन है उनको वो जारियाना अंदाज है, खाते हुए उठते हुए, अब जैसे आज ब्रह्मा के रोजे आ गए तो अब ये कि शहरी में इफ्तारी में अगर आपको बच्चे देखेंगे कि ये सब लड़ते झगड़ते हैं तो नेचर बच्चे के अंदर पैदा होगा। तो घर का नेचर बड़ा मैटर करता है, माँ बाप को तो हमेशा नरमी सिखानी चाहिए, समझदारी सिखाएं, अच्छे बुरे की तमीज सिखाएं, ताकि आपका बच्चा ये किसी बड़ी प्रॉब्लम में ना आ जाए।
नांदेड़ में डॉक्टर नौमान बात कर रहा हूँ, बस मुझे एक ये सजेस्ट करना था कि जो घर का माहौल होता है ना सबसे ज्यादा वो बच्चों के ऊपर असर करता है। जैसे कि मेरे वालदेन ने, हम पांच बहन भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तीन को डॉक्टर बना दिए और अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से इलाके से मैं डॉक्टर बनाऊँ, मेरे बहन भाई डॉक्टर बने, ये सिर्फ हमारे घर का माहौल है जो हमारे वालदेन ने हमें तरबियत दी, हमें सिखाया। तो मैं भी इधर से एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके जरिए से कि वालदेन को अपने बच्चों को चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ घर का माहौल अच्छा करें और इससे इंशाल्लाह तरबियत में बहुत फर्क पड़ेगा।
जी बिल्कुल, तरबियत से फर्क पड़ेगा। कई उलमा है जिन्होंने अपने बच्चों को आलिम बनाया, कई हाफिज ने बच्चों को हाफिज बनाया है, और वालिदैन के नेचर को औलाद बिल्कुल बाकायदा लेती है। बल्कि मैं किताब में पढ़ रहा था कि ज्यादातर जो जिम्मेदारी बच्चे की है ना वो नेचर फितरी तौर पर वो माँ की जिम्मेदारी पर ज्यादा डाला गया है कि ये माँ है क्योंकि ये बच्चे को बड़े अरसे तक बच्चा माँ के साथ अटैच रहता है, बाप के साथ तो बहुत आगे जाकर अटैचमेंट शुरू हो जाती है, खाना पीना उठना बैठना सोना जागना बहुत सारी चीजें माँ के साथ रिलेटेड है। अगर माँ खुदा ना खासा लड़ाई झगड़े वाली और माँ यूं जारियाना अंदाज है तो फिर बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है। वाकई सही कह रहे हैं कि वालिदैन की तरबियत का बच्चों पर बड़ा अच्छा या बुरा जैसे वालिदैन की तरबियत असर पड़ता है। जी
मोहम्मद शमूर रजा तारिक दीनतुल औलिया मुल्तान। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये सिलसिला न्यू जनरेशन या जनरेशन के हवाले से है, हमारी नस्लों के हवाले से है। मैं अपने बेटों के साथ बैठकर ये सुन रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और काफी अल्हम्दुलिल्लाह फायदा होने की उम्मीदें भी है, फायदा हो रहा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला हमें आपके इस व्यूज के मुताबिक तरबियत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।
बहुत बहुत शुक्रिया, हौसला अफजाई का शुक्रिया। मैं रियली मैं खुद थोड़ा सा कन्फ्यूज था, पता नहीं मैंने कहा अब मैं ये प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ नाजरीन क्या एक्सपेक्ट करते होंगे, लेकिन मैं क्या करूं, मैं जहां जा रहा हूं नॉर्मली मुझे ज्यादातर बच्चों के इश्यूज पता चल रहे हैं। जी
जारियाना रवैया आज से जो टॉपिक है उसके सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूजुअली यही देखने में आया है कि अगर वालिद साहब या जो दादा हैं वो जारियाना मिजाज के हैं तो फिर आगे औलाद भी वैसी ही होती है, बच्चा भी वैसा ही होता है। क्या अब हमारी सारी नस्लें ऐसी ही होंगी? क्या हमारी नस्लें माशरे को खराब कर रही हैं? तो इस बारे में कोई इरशाद फरमाएं कि अब हमारी नस्लें कैसे ठीक होंगी? क्या हम नस्लें बंद कर दें फिर माशरा ठीक हो जाएगा? कुछ इस तरह के मदनी फूल ताकर
तरबियत बच्चा, जैसे कि बच्चे में अगर कोई बीमारी आ गई है तो आप बच्चे की उम्र से कद थोड़ी रोक सकते हैं, उसकी उम्र भी बढ़ती रही कद भी बढ़ता रहेगा और उसी दौरान उसका इलाज करना है ना। अब अगर कोई मतलब के खानदानी दुश्मनियां लेकर बैठे हैं, देखे बाप दुश्मनी उतार रहा है गन लेकर कुल्हाड़ा लेकर लड़ी रहा है तो बच्चे भी उसी तरह वो लड़ते लड़ते फिर खानदान के खानदान लड़ रहे होते हैं। अगर वालिदैन के अंदर नरमी मोहब्बत दरगुजर पैदा होगी और वो इसी उनवान पर तरबियत करेंगे, हो सकता है बच्चा आकर के बाबा का बच्चा आकर कहता है अम्मी अम्मी मुझे फला ने मारा तो अम्मी कहते तेरे हाथ टूट गए थे तू नहीं मार सकता था, बुजदिल किधर का यूं बोल के फिर बोलते जा उसको मार कर आ। तो अब ये पहले वैसे हम इसको मतलब के वो नेचर सिखा रहे कि जा लड़ कर आ झगड़ कर आ मार कर आ पीट कर आ और जनाब ये सब आएगा तब पता चलेगा। तो फिर कल को जो होगा वो होगा माशरे में, तो इंशाल्लाह माशरा बेहतर होगा। असल है तरबियत तरबियत तरबियत, याद रखे तालीम और तरबियत में फर्क है। इस वक्त हम जो है ना वो तालीम के पीछे पागल हैं, तालीम क्योंकि पता तालीम से रोजगार मिल जाएगा, वो तो नेचर तो बाद में पता चलेगा ना। पहले तो वो सर्टिफिकेट देखते हैं ना कि पढ़ा हुआ पढ़ा हुआ इसको नौकरी दे दो, वो पढ़ा हुआ उसकी तरबियत हुई तो आगे करेगा ना। तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह हम तरबियत पर ये प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं। जी
निगरानी शुरा की खिदमत में अर्ज करना है कि फिल वाके हमारे माशरे के अंदर औलाद की तरबियत के हवाले से बेशुमार मसाइल पाए जाते हैं और जाती तौर पर मुझे मुशाहिदा भी हुआ और मुझसे खुद वालिदैन यानी जो बाप हैं उन्होंने इजहार किया कि हमने वैसे तो अपनी बच्चों की खातिर जिंदगी गुजार दी और दुनिया जहाँ की नेमतें भी हासिल हुई और दुनिया जहाँ घूम भी गए, मगर हमारी औलाद उस तरह नहीं बन सकी जैसा हम चाहते थे। एक नहीं दो नहीं ये कई लोगों ने इसका इजहार किया है, तो इस हवाले से ऐसी शुरा फरमाएं कि हम क्यों अपनी औलाद को ऐसा नहीं बना पाते कि बाद में हम खुद महरूमी का शिकार रह जाते हैं।
देखिए जैसा साइज देंगे वैसा कपड़ा सिलेगा, अगर दर्जी ने आपको कपड़ा सही सी कर नहीं दिया है तो इसकी दो वजह होगी, या तो वो उसको कपड़ा सीने नहीं आता था या आपने साइज ही सही नहीं दिया था, तो दोनों देखा जाएगा। तो या तो हमने अपनी तरबियत सही नहीं की या फिर हमने इसको जहाँ दिया था वहां उसकी तरबियत सही नहीं हुई, या तो वो लोग नाकिस थे या हम नाकिस थे। ज्यादा नॉर्मली यही होता है, अमूमन की बात कर रहा हूँ जनरल, कि आप जिस तरह अपने बच्चे की तरबियत करेंगे तो बच्चा इस तरह आपके सामने निखर कर सामने आएगा। फिर उसकी गैदरिंग वगैरह जो देखनी है उस पर भी मैं कुछ अर्ज कर चुका हूँ। तो ये होता है, अलबत्त बाद औकात ये के मुकद्दर कि आपने तरबियत भी की अपने तौर पर सब कुछ करने की कोशिश की लेकिन उसके मुकद्दर में यह था कि वो हाथ से निकल गया, तो अब वो एक अलग बात। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, अब आदम अलैहिस्सलाम वो तो अल्लाह के नबी हैं, उनकी शान तो क्या बात उनकी शान की, तो उनकी तरबियत और उनके मामलात की तो आदमी क्या मिसाल देगा। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर, एक बेटा नेक जिनका नाम हाबिल था और एक बेटा बुरा बद और उसने जो कुछ किया, हत्ता के अपने भाई का कत्ल कर दिया, उसका नाम काबिल था, दोनों थे तो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, एक का मकाम एक अल्लाह की बारगाह में मकबूल था, एक अल्लाह की बारगाह में मर्दूद हो गया। तो लेकिन हम अपनी कोशिशें जारी रखें, इंशाल्लाह कल नए प्रोग्राम के साथ, नए नाम के साथ, नए इशू के साथ फिर हाजिरी देंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे घर बार को अल्लाह शाद आबाद रखे। आमीन। बिजाहिन नबी जी नमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि